तो नाभि और किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरणमय, कुरु, भद्राश्व तथा केतुमाल, ये नौ पुत्र उनके हुए। और फिर इन नौ पुत्रों को भी उन्होंने अपना अपना राज्य दे दिया था, और ये आग्निद्र ने। तो आग्निद्र का जब ये नौ पुत्र बड़े हो गए तो जो पूर्व चित्ती थी वह इनको छोड़ करके चले गए। इसने पूर्व चित्ती ने अपना दूध पिलाया था इन बच्चों को, और इसके कारण से खूब हृष्टपुष्ट बच्चे हुए थे। और फिर जब वह बड़े हो गए, सयाने हो गए, तो उनको छोड़ करके वह वापस ब्रह्मलोक को चले गए। यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि अप्सराएं नॉर्मली जब आती हैं तो या तो वे इंद्रलोक से आती हैं या ब्रह्मलोक से आती हैं। तो वे आती हैं तो किसी न किसी को रिझाने के लिए आती हैं, पर परमानेंट वे यहाँ पे नहीं रहती हैं। और इसका उदाहरण उन्होंने, प्रभुपाद जी ने दिया है कि जैसे मेनका इंद्रलोक से आई थी, बड़ी सुंदर थी, तो विश्वामित्र जी को रिझाने के लिए वह आई थी। तो विश्वामित्र जी बहुत बड़े योगी थे, पर योग के कारण भी वे पतित हो गए, वे इसके ऊपर रीझ गए मेनका पर, और उनको आपस में संग हुआ और एक पुत्री हुई जिसका नाम था शकुंतला। लेकिन कई दिनों तक वास करने के बाद फिर वह भी मेनका वापस चली गई अपने स्वर्गलोक में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि योगी चाहे जितना बड़ा योग में हो, वह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इंद्रियां कंट्रोल केवल भगवत भक्ति से ही होती हैं। जब तक कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे कोई भी योगी, तब तक वह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। उसकी काम वासनाएं जागृत हो जाएंगी, संसार को भोगने की वासनाएं जागृत हो जाएगी। अब विश्वामित्र से बड़ा तो कोई योगी हो ही नहीं सकता है, इतना बड़ा योगी थे, लेकिन फिर भी देखो वे पतित हो गए। और फिर जैसे मेनका भागी तो विश्वामित्र जी भी फिर भाग गए उस बच्ची को छोड़ करके, और फिर जंगल में ही उस बच्ची का पालन पोषण हुआ। तो ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें मोस्टली ये कर्मकांडी प्रसंग है, पर चूंकि ब्रह्मा जी की आज्ञा थी कि संतान उत्पन्न करने से सृष्टि उत्पन्न होनी चाहिए, इसलिए ये ठीक है कि इनका विवाह हुआ, कई संतानें हुई, भोग विलास किया। जैसे कि आपने देखा कि उसकी सुंदरता का वर्णन पूर्व चित्ती का किया गया, कितनी सुंदर थी, और एक एक अंग पर, और ये आग्निद्र महाराज रीझ गए थे। तो ये उनके लिए ठीक था उस समय के लिए, पर क्या आज हमारे लिए ये उचित है? क्या हमें भी इसी प्रकार भोगों में लिप्त होना चाहिए? ये जो वंश चलाने के लिए की बात जो की गई है, कई लेक्चर्स में ये बात आई है, तो इनके लिए ठीक था, क्योंकि भगवान ने स्वयं इन्हीं वंशों में अवतार लिया था। पर ये वंशवाद हम लोगों के लिए कोई मायना नहीं रखता है। हम लोगों को केवल कृष्ण की भक्ति ही करनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके संसार से विरक्त होना चाहिए, परिवार से विरक्त होना चाहिए, तब जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है। उसी बात को कई भागवत में कई जगह पर यह बात आई है, ऋषभदेव जी ने भी यही बात कही है, कुंती महारानी ने भी यही बात कही है, प्रहलाद महाराज ने भी यही बात कही है। तो कुछ श्लोक हम इनके महानुभावों के हम लेंगे इस बात को पुष्ट करने के लिए। तो पहले ऋषभ देव जी के दो चार श्लोक लेंगे हम कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विण भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मन हे पुत्रों, ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा कि इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे देह की प्राप्ति हुई है, देहो माने देहधारी, देह भाजाम इस संसार में नृलोके इस मनुष्य लोक में मृत लोक में जिसको देह की प्राप्ति हुई है, तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए अहर्निश माने कंटिन्यूअस कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। न अयम देहो, न माने नहीं करना चाहिए, बोले क्या, बोले कष्टान कामान अर्हते, जो कष्ट प्राप्त करके और हम जो अपने जीविका चलाते हैं, तो केवल संसार को भोगने के लिए पैसा चाहिए, स्त्री चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, धन चाहिए, तो इन सब में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। बोले क्यों, बोले विण भुजाम वे, बोले ऐसा तो ये तो सब चीजें एक कुकर शुकर भी यही काम करते हैं, कुत्ता सुअर ये भी बोले यही काम करते हैं, तो फिर मनुष्य और कुकर शुकर में डिफरेंस क्या हुआ। मनुष्य में ज्ञान है कि वह कृष्ण की भक्ति करके भगवान के धाम जाना चाहता है, अदरवाइज हमारे जो ये चार कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बुढ़ापा का कष्ट भोगना, व्याधि रोग का कष्ट भोगना, इसी में पड़े रहेंगे हम। भगवान के धाम जाने का अवसर हमको प्राप्त हुआ इस मनुष्य देह में, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो इसी बात को ऋषभदेव जी कहते हैं कि न अर्हते, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो बोले क्या करना चाहिए, बोले तपो दिव्यम, दिव्य तप करना चाहिए पुत्र का, ये पुत्रों ये न सत्वम शुद्धेद अस्मात, माने खूब कड़ी भक्ति करनी चाहिए जिससे शुद्ध हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और ब्रह्म सौख्यम हम भगवान के धाम में फिर जा सकेंगे। तो वह जो सुख हमको प्राप्त होएगा, तो तुम अनंतम, तू अनंतम, उस सुख की कोई कंपैरिजन नहीं है। आज इस संसार में हम लोग बिल्कुल सुख नहीं पा रहे हैं, केवल दुख ही दुख है, सब दुख में है। इतने लोग बैठे हैं, कोई एक तो कह दे कि हम बहुत सुखी हैं, कोई नहीं है। किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, किसी को अपने शरीर से दुख है, किसी को पैसे से दुख है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई स्त्री का, किसी को बच्चों का, कोई बच्चा उसकी बात मानता नहीं है पिताओं की माताओं की, दुख है। तो यह सुख है ही नहीं। तो ऋषभदेव जी कहते हैं कि सुख भगवान के धाम में है और उसका कोई अंत नहीं है। तू अनंतम, बोले तमो द्वारम योषिताम संगी संगम 552, बोले जो स्त्री तथा जो स्त्री संग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो संग करते हैं उनको क्या होता है, बोले तमो द्वारम, नरक का द्वार उसके लिए ओपन है, खुला हुआ है, बिल्कुल खुला रहता है। जब ऐसे लोगों का संग करने से नरक का द्वार मिलता है, तो जो लोग खुद इसमें लिप्त हैं, स्त्री संग में, भोगों में, तो फिर हमारे लिए तो नरक का द्वार खुला ही है, क्यों नहीं खुला रहेगा। बोले ये वा मयिषे कृत सौहार्दार्थ जनेषु देहंबर वार्तिकेशु ग्रहेषु जायात्म जराति मत्सु न प्रीति युक्ता यावद अर्थाश्च लोके 553। माने जो लोग श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। ये वा अयम ईशे, ईशे माने कृष्ण, भगवान कृष्ण में जो भक्ति करना चाहते हैं, और कृत सौहृद अर्थ माने अपनी भक्ति को दृढ़ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं उस भक्ति को, तो क्या करना चाहिए? तो वे श्री कृष्ण के संबंधित कार्य वे करते हैं। कृष्ण से संबंधित कार्य क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यह है कृष्ण से संबंधित कार्य, नवदा भक्ति उसको वे करते हैं। तो उन लोगों से वे मेलजोल नहीं बढ़ाते हैं। बोले जनेशु देहम बर वार्तिकेशु, ऐसे लोगों से जनेशु वे लोग मेलजोल नहीं बढ़ाते हैं जो केवल अपना शरीर पालन करते हैं, भोजन खाते हैं, शयन करते हैं और रात को स्त्री संग करते हैं, इनके इसी में वो व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोगों से ये जो भक्त होते हैं वे बिल्कुल भी संग नहीं करते हैं। बोले गृहस्थ होते हुए भी, गृहेशु गृहस्थ होते हुए भी वे और घर में आसक्त नहीं होते हैं। आप घर में रहिए, गृहस्थी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट। घर में आसक्ति हो गई तो फिर भक्ति नहीं होगी। ये दोनों बिल्कुल विपरीत चीजें हैं, एक को छोड़ना पड़ेगा, या तो भक्ति छोड़ो या घर की आसक्ति छोड़ो, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो भक्त लोग घर में आसक्त नहीं होते हैं। बोले गृहेशु और जाया पत्नी, आत्मज पुत्र, राति धन, इन सब में और उनकी बिल्कुल भी प्रीति नहीं होती है, न वे पत्नी में प्रेम करते हैं। ये उन लोगों के लिए बातें हो रही हैं जो भक्त नहीं हैं, माने न वे पत्नी से प्रेम करते हैं ऐसे भक्त लोग, न वे पुत्र से, न धन से, न घर से, किसी में भी वे लिप्त नहीं होते हैं। और तो बोले मेंटेनेंस करने के लिए परिवार को कमाना तो पड़ेगा, बोले कमाइए, लेकिन यावद अर्थाश्च लोके, जितनी जरूरत है उतना ही कमाइए। अभी हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ देखते हैं, हम सुबह 7 बजे चले जाते हैं अपने जॉब के लिए लोग, और रात के 8 बजे वे लोग आते हैं। दिन भर केवल जॉब के अंदर लिप्त हैं, आ करके प्रसाद खाया, स्त्री संग किया, सो गए। तो यह भक्तों का काम नहीं है, जितना चाहिए उतना ही कमाइए, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है भक्तों को। तो नूनम प्रमत्त है कुरुते विकर्म, यदि इंद्रिय प्रीत आप्रण होती न साधु मन्ने यत आत्मनोयम असन्न अपि क्लेशद आस दे है। बोले जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन को अपना लक्ष्य मान लेता है तो फिर वह भौतिक रहन सहन के पीछे पागल हो जाता है। प्रमत्त शब्द आया यहाँ पे, नूनम प्रमत्त है, तो पागल हो जाता है कि किस प्रकार मैं धन कमाऊँ, किस प्रकार सुंदर स्त्री से विवाह करूँ, किस प्रकार बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाऊँ, किस प्रकार अच्छा घर लूँ, किस प्रकार अच्छी गाड़ी लूँ, बस इसी में वह लगा रहता है। तो कुरुते विकर्म, तो उसके लिए वह विकर्म माने पाप कर्म भी वह करता है। तो यदि इंद्रिय प्रीति आप्रण होती, उसको यह ज्ञात नहीं रहता कि अपने विगत पाप कर्मों के कारण ही हमको यह मनुष्य देह मिला हुआ है जो कि क्षण भंगुर है, नहीं तो भगवान के धाम जाते हैं हम, क्यों इस जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते, हम नहीं जाते। 84 लाख की योनि चक्कर घूमते 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 ये मनुष्य देह सर्कुलेशन में आ गया, और आकर के फिर उसको ही वेस्ट कर देते हैं इस इंद्र तृप्ति के लिए, भोगों के लिए। किंतु इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है कि हमने मनुष्य देह को और बिल्कुल ही वेस्ट कर दिया। तो न साधु मन ने, ऋषभ देव जी कहते हैं कि मैं इस बात को मानता हूं कि यत आत्मनोयम असन्नपि, कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति में लग जाए, क्योंकि इसी इंद्रिय तृप्ति के कारण होता क्या है, एक से दूसरा शरीर प्राप्त होता है, दूसरे से तीसरा शरीर प्राप्त होता है। आज हम मनुष्य देह में हैं, नेक्स्ट जन्म हमारा हो सकता है कुत्ता बिल्ली में हो, जबकि प्रभुपाद जी इसके लिए कहते हैं डॉग्स एंड कैट्स प्राप्त हो सकता है। तो क्या हम बारंबार इसी में घूमते रहेंगे, जो कि क्लेशद क्लेश देने वाला है, इसमें कोई सुख नहीं है, आनंद नहीं है, एक टेम्परेरी सुख के लिए, और हम लोग इसमें लिप्त हो जाते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। देखिए इतना सुंदर प्रवचन ऋषभ देव जी का होकर के भी केवल 11 लोग उनके बच्चे नव योगेंद्र हुए, वे भक्ति में हुए, जिनकी कथा 11th कैंटो में है, बड़ी अच्छी कथा है, और बाकी 89 कर्मकांडी हो गए शरीर में इंद्रिय में लिप्त, इतना अच्छा प्रवचन होने के बाद भी। भगवान ने स्वयं अपने मुख से इस बात को कहा है, ऋषभ देव जी ने, भगवान के अवतार हैं वे। तो इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि हमको क्या करना चाहिए, बोले शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। बोले हे प्रभु, जो व्यक्ति शृण्वन्ति निरंतर, अभीक्षणशः शब्द इसके अंदर आया है, निरंतर आपके कथाओं का श्रवण करता रहता है, तब इहितम, तब इहितम माने आपकी लीलाएं, आपकी लीलाओं को जो श्रवण करता रहता है, गायन्ति गाता है, गृणन्ति जाप करता है, अभीक्षणशः निरंतर ऐसा जो करता है, और स्मरन्ति उन लीलाओं को जो स्मरण करता है, नंदन्ति जो दूसरे भजन कर रहे हैं उनका अभिनंदन करता है, तो ऐसे लोग ऐसे जनाहा तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं चरणाम्बुजम्, आपके चरण कमल को वह अचिरेण शीघ्र ही उनका वह दर्शन करता है, अचिरेण शीघ्र उनका दर्शन करता है। बोले आपके चरण कमल कैसे हैं, भले भव प्रवाह परमम, ये जो भव प्रवाह है संसार का प्रवाह, जन्म मृत्यु का चक्कर, 84 का चक्कर, इसको ये चरण कमल हटा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बार बार जन्म लेना चाहिए कि जन्म मृत्यु का हटा देना चाहिए, तो उसके लिए यही काम है कि भव प्रवाहो चरणम पदाम्बुजम, कृष्ण के चरण कमल की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति में श्रेष्ठ क्या है, बोले शृण्वन्ति, सुनना चाहिए, रोज भागवत सुनना चाहिए, और प्रभुपाद जी ने इसीलिए ये नियम बनाया है कि रोज मॉर्निंग क्लास में आना चाहिए। कई लोग अपने को बहुत सीनियर समझ जाते हैं, अरे क्या ये तो जूनियर भक्त बोल रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो सोचते हैं कि क्या सुनना इनका। आप भागवत ऐसी है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बैठे हैं यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भागवत अपना प्रभाव करती है, वो अपना इम्पैक्ट छोड़ती है, वो किसी न किसी रूप में आपकी भक्ति को बढ़ा देगी। तो शृण्वन्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, शृण्वन्ति, और फिर गायन्ति, जैसे आप सुन रहे हैं मैं गा रहा हूँ, गायन्ति कथा को बोल रहा हूँ, और गृणन्ति जाप करना मन मन में, हरे कृष्ण गृणन्ति, कान से सुनना मुंह से बोलना, गृणन्ति इसको गृणन्ति कहते हैं। तो अभीक्षणशः जो निरंतर ऐसा करते हैं, और स्मरन्ति स्मरण करते हैं कृष्ण की लीलाओं को, आज भगवान गोकुल में माखन चोरी कर रहे हैं, आज भगवान ने गोवर्धन धारण किया है, आज भगवान ने काली नाग का मृत की वर्धन किया मर्दन किया है, इस प्रकार की लीलाओं का जो स्मरण करते हैं, और नंदन्ति आप भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं लेकिन दूसरे लोग जो भागवत नहीं सुन रहे हैं वे भी, और आकर के आपके अभिनंदन करते हैं, ओ बड़ा अच्छा किया आपने भागवत सुनी। और भागवत का जब आयोजन होता है तो उसमें वे धन से या और कोई भी सहायता से, शरीर से सहायता करते हैं, उसको बोलते हैं नंदंती, अभिनंदन। तो इस प्रकार ये नवधा भक्ति के ही शब्द अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, बोलो दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। तो जो ये कुंती महारानी उसी को यहाँ पे रिपीट कर रही है, जो इन भक्ति के खाली इन नौ भक्तियों में से, नौ अंग भक्ति के जो हैं, केवल आप श्रवणंती को अपना लोगे ना तो बाकी के आठ अपने आप आ जाती हैं उसके अंदर में। श्रवण मुख्य है, उसको करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कहा है, जैसे हमारी आयु इस कलयुग में शास्त्र जो कहता है वह 100 वर्ष की आयु हमारी है, तो 100 वर्ष हमारे कैसे बीत जाते हैं बिना भक्ति के, जैसे कि 100 वर्ष तो होते भी नहीं हैं, अब 70-80 ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 80 के बीच में ही सब लोग चले जाते हैं। एक्चुअली तो 60 के बाद में जो भी जीवित रहता है उसको बोनस ईयर्स कहते हैं, ये भगवान की तरफ से बोनस मिला हुआ है, तो उस समय का उपयोग भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और तीव्रेण भक्ति योगे न, खूब तीव्रता से भक्ति उस समय करनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमारे 100 वर्ष कैसे व्यर्थ चले जाते हैं, बोले पुंसम वर्ष शतम यायु तदर्थम च अजितात्मन है, निष्फलम यद सो रात्र्याम शेतेन्दम प्रापितस्तम है। 766 पुंसो मने जीव, मनुष्य वर्षो शतम 100 वर्ष तक सपोज जीता है, लेकिन आधे टाइम तो वो सोता रहता है, 12 घंटा रात को सोया तो आधे टाइम तो सोता रहता है, तो उसकी आयु कितनी हो गई, 50%, 100 वर्ष की सीधी 50 वर्ष उसकी आयु रह गई। तो प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अजित आत्मन है, जो अपनी इंद्रियों को जीत नहीं सकता है, अजित आत्मन है, तो ऐसा व्यक्ति अज्ञानवश उसकी आयु आधे टाइम तो सोने में चली जाती है, तो केवल उसके पास अब कितना टाइम रहा, 50 वर्ष भक्ति के उसके पास रह गए। अब 50 वर्ष में भी मुग्धश्च बाले कैशोरे क्रीडतो याति विंशति, बचपन में जब होता है वह, तब खेलकूद में बचपन में उसका 10 वर्ष बीत जाता है, और फिर कैशोर अवस्था 10 से 15 वर्ष की अवस्था, कैशोरे कैशोर अवस्था में क्रीडतो खेलने में याति माने समाप्त हो जाती है, विंशति 20 वर्ष उसके समाप्त हो गए, तो टोटल कितने हो गए 70। अब कितना बचा आपके पास में, 30 साल। तो जरियाग्रस्त देहस्य, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में बाथरूम जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम भक्ति क्या करेंगे, उस समय बाथरूम पकड़ के ले जाना पड़ता है हमको, तो उसमें जरियाग्रस्त देहस्य याति अकल्पस्य विंशति, 20 वर्ष उसमें बीत गए। 60 वर्ष के हो गए, सपोज 80 वर्ष की आयु है, 20 वर्ष उसमें बीत गए, तो बचा क्या हमारे पास में, खाली 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में भी फिर क्या करते हैं हम लोग, बोले दूरा पूरे न कामे न मोहे न च बलियसा, जवानी आ गई, शादी कर लिया तो पत्नी के अंदर आसक्त हो गए, बच्चे पैदा हो गए, अब तो बच्चों का ब्याह होना चाहिए, पहले पढ़ाई कराना फिर ब्याह होना चाहिए, और फिर बच्चों का भी ब्याह होना चाहिए, लिपट गए, मकड़ी का जाल जो होता है ना उस तरह से हम बिल्कुल लिपट गए। तो दूरापूर्ण कामे न, हमारी कामनाएं इतनी हैं दूरापूर्ण है, जिनकी पूर्ति हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। आज हमारे पास एक बेडरूम का घर है, हम चाहेंगे 2 बेडरूम का घर हो, 2 का हो जाएगा 4 बेडरूम का घर चाहेंगे, आज कोई खराब लोकेलिटी में है अच्छी लोकेलिटी में घर लेना चाहेंगे, आज हमारे पास कोई मर्सिडीज बेंज नहीं है, खाली हम मारुति है, हम चाहेंगे हमारे पास मर्सिडीज बेंज हो जाए, दूरापूर्ण है, कामनाओं की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दुरा पूर्ण कामेन मोहेन, और मोह हो जाता है किसमें, परिवार में, स्त्री में, पुत्र में, धन में। और वह मोह कैसा है, बोले बलीय सा, बड़ा बलवान, यह मोह बड़ा बलवान होता है। तो इसमें शेषम ग्रहे सुसक्तस्य, वह व्यक्ति घर में, परिवार में, संसार में आसक्त हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, बोले प्रमत्त, पागल है ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार आसक्त हो जाता है, क्योंकि अपयाति ही अपने जीवन की जो 10 वर्ष बचे थे उनको भी वह समाप्त कर देता है। तो फिर भजन के लिए कहाँ टाइम मिला फिर हमको, फिर वही 84 का चक्कर, वापिस वही जन्म लो मृत्यु लो, कुत्ता बिल्ली बनो। तो इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसके लिए एक श्लोक और प्रभु प्रहलाद महाराज बताते हैं कि को ग्रहेशु पुमान सकता है, बोले ऐसा कौन व्यक्ति हुआ जो घर में आसक्त है और आत्मानम अजितेंद्रिय और अपने इंद्रियों को भी वश में नहीं कर पा रहा है, कि जितना है उसमें संतोष करूं, भगवान की भक्ति करूं, उसमें भी वो अजितेंद्रिय है, तो उसका स्नेह पाशे दृढ़म, उसका पाश स्नेह जो है परिवार में, स्त्री में, पुत्र में, धन में, ये पाश है। पाश माने जंजीर, जेल में जाते हैं ना बंधन, ये पाश है। तो इसने पाश में कैसा, बोले दृढ़म, वो बन जाता है इनके कारण से। जब बन जाता है और बंधा किससे, दो चीज से, एक तो अजितेंद्रिय और दूसरा आसक्तम परिवार में। तो जब ऐसा हो गया तो उत्साहित किम विमोचितम, वह कैसे अपने को छुड़ा सकता है, कैसे वह भगवान की भक्ति करेगा, कैसे वह चाहेगा कि मैं भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाऊं, नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, तो जैसा कुंती महाराज ने कहा है कि शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणशः रम स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हि तम जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। शीघ्र ही उनको कृष्ण के चरण कमल का दर्शन होता है। बोले कैसे हैं कृष्ण के चरण कमल, बोले भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, ये हमारे भव प्रवाह को रोकने वाले हैं। कुंती महारानी की कथा 3 दिन के लिए हमको दिया गया है, 6, 7, 8 अक्टूबर को 5 से 6:30 बजे के बीच में, शाम को 1.5 घंटे का। कुछ श्लोकों का आस्वादन हम आपको उस समय कराएंगे। तो अब एक भजन गाएंगे, ये पेपर्स दे दीजिए सबको, आधा माता जी को आधा प्रभु जी लोगों को। माता जी को ये माता जी दे देंगी, आप प्रभु जी लोगों में बांटिए। थोड़ा जल्दी करिए, कुछ शॉर्ट पढ़े तो दो दो प्रभु एक, दो दो माताएं एक एक में पढ़ लें। गोकुल के गेल 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 ग्वालिनी की, गोकुल के गेल 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 ग्वालिनी की, गोरस के काज लाज बस के बहाई बो, गोरस के काज लाज बस के बहाई बो, जब कृष्ण ब्रज से मथुरा आ गए तो उसमें उनका मन गोपियाँ तो ठीक है बिरह में थी ही, कृष्ण का भी मन नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो वे उद्धव जी को कहते हैं कि देखो उद्धव, मुझको गोकुल याद आ रहा है, वहाँ की जो लीलाएं मैंने की हैं वो मुझको बारंबार याद आ रही हैं। तो गोकुल की गैल गैल है, गैल गैल ग्वालिन, उद्धव मैं ब्रज की लीला की क्या बात कहूँ, गोकुल की गली गली में और झुंड के झुंड गोपियों के गोरस के लिए, दूध के लिए मैं लाज को पानी की तरह बहा देता था। गोरस कर लकाज लाज बस के बहाई वो, गोरस माने दूध दही मक्खन, उस गोरस के लिए मैं तरसता था, लाज को अपने बस में और बहा देता था। मतलब मुझे कोई लज्जा नहीं आती थी गोपियों से दूध दही मक्खन मांग के खाने में, खाता था पीता था। तो आज मुझे वह लीला याद आ रही है। गोकुल की गेल 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 ग्वालिनी की, गोरस के काज लाज बस के बहाई बो, कहे रत ना कर रिझाई बो न बेलिनी को, कहे रत ना कर रिझाई बो न बेलिनी को, गाई बो गवाई बो ओ नाची बो नचाई बो, गाई बो गवाई बो ओ नाची बो नचाई बो। किसी को मृदंग आता तो साथ साथ में प्ले कर सकते हैं। तो कहे रतन नाकर रिझाई बो नवेलिनी को, और रत्नाकर जी का लिखा हुआ है ये भजन, उन ब्रज युवतियों को किस तरह में रिझाता था। बोले गाई बो गवाई बो नाची बो नचाई बो, मैं खुद गाता था, मैं उनसे गीत गवाता था, मैं खुद नाचता था, मक्खन के लिए नाचते थे वे, खुद नाचता था और उन सबको मैं नचाता था। कहे रत ना कर रिझाई बो न बेलिनी को, गाई बो गवाई बो नाची बो नचाई बो, की बो श्रम हार मनुहार के विविध विधि, की बो श्रम हार मनुहार के विविध विधि, मोहिनी मृदुल मंजू बांसुरी बजाई बो, मोहिनी मृदुल मंजू बांसुरी बजाई बो, किबो श्रमहार मनुहार के विविध विधि। और कभी कभी मैं राधा रानी को पंखा झलता था, उनके चरण दबाता था, मतलब श्रमहार मन जब वो थक जाती थी श्रम परिश्रम करके तो उनका चरण दबाता था, उनको पंखा झलता था और उनकी परिश्रम को मैं दूर करता था, किसी भी तरह से उनको मैं दूर करता था। और मनुहार के विविध विधि मैं राधा रानी को मनाता था, जब गुस्सा हो जाती थी मानिनी हो जाती थी, राधा रानी का एक नाम है मान्या, जो मान करती हैं तो उनको मानिनी, बार बार में वे गुस्सा हो जाती थी तो उनको मैं मनाता था, मानिनी बनने पर राधा रानी को मैं मनाता था। तो मनुहार लीला मतलब मनाने की लीला और परिश्रम दूर करने की लीला। और फिर मोहिनी मृदुल मंजू बांसुरी बजाई पो, और वो मधुर मोहिनी बांसुरी का बजाना उधो, वह तो कि वो श्रम हार मनुहार के भी बीद बीदी, मोहिनी मृदुल मंजू बांसुरी बजाई बो, उधो सुख संपत्ति समाज ब्रज मंडल के, उधो सुख संपत्ति समाज ब्रज मंडल के, भूले हूँ भूले भूले हमको भुलाई बो, भूले हूँ भूले भूले हमको भुलाई बो, उधो वो तो सब जब जब ब्रजमंडल की इस सुख संपत्ति का स्मरण आ रहा है तो भूलने पर भी मैं नहीं भूल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ भूल जाऊँ पर उन लीलाओं को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, भुलाना मुझको भूल गया है, मैं कैसे अब उनको भूल जाऊँ, कैसे भुलाया जाएगा यह भी मुझको भूल गया है, मैं भूल गया हूँ। तो यह ब्रजमंडल का वैभव और सुख, भगवान ऐसे मथुरा में राजा के रूप में हैं, नाम मात्र के उग्रसेन जी राजा हैं पर वास्तव में कृष्ण ही राजा हैं, पर ब्रज के सुख का स्मरण हो रहा है तो पश्चाताप कर रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, और जमुना जी के तीर पर क्या क्या लीलाएं होती थी गोपियों के साथ और गोप सखाओं के साथ उसकी वे याद कर रहे हैं। तो इस भजन को साथ में सब लोग गाएंगे, मेरे साथ ही गाइए। गोकुल की गैल 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 ग्वाली न की गोरस के काज लाज बस के बहाई बो, कहे रत ना कर बुझ, साथ साथ में गाइए, फिर से गाएंगे। गोकुल की गैल 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 ग्वाली न की गोरस के काज लाज बस के बहाई बो, कहे रत ना कर रिझाई बो न बेलिनी को गाई बो गवाई बो नाची बो नचाई बो, कि वो श्रम हार मनुहार के भी बीद बीद मोहिनी मृदुल मंज बांसुरी बजाई बो, उधो सुख संपत्ति समाज ब्रज मंडल के भूले हूँ न भूले भूल हमको भुलाई बो, भूले हूँ न भूले भूल हमको भुलाई। इस भजन की कॉपी किसको ले जानी है तो ले जा सकता है। तो किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा? हाँ है? हाँ हाँ नहीं ऐसे ले लीजिए, इसमें ले लीजिए, और भी किसी को ले जाना है तो भजन की कॉपी ले जा सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा? चलिए आइए साथ में गाइए सब लोग। गोकुल की गैल 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 ग्वाली न की गोरस के काज लाज बस के बसाई बो, कहे रत ना कर रिझाई बो न बेलिनी को गाई बो गवाई बो नाची बो नचाई बो, कि वो श्रम हार मनुहार के भी बीद बीद मोहिनी मृदुल मंजू बांसुरी बजाई बो, उधो सुख संपत्ति समाज ब्रज मंडल के भूले हूँ न भूले भूले हमको भुलाई बो, भूले हूँ न भूले भूले हमको बुलाए। हरे कृष्णा।